ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। लुम्बिनी प्रदेश में चुनावी सुरक्षा की तैयारी संबंध में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सुरक्षा अधिकारियों से लिया संज्ञान। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने के उद्देश्य के साथ काम करने का सुरक्षा निकायों को किया निर्देश। सुदूर पश्चिम कर्णाली और कोसी प्रदेशों में मतपत्र सहित चुनावी सामग्रियों की ढुआई हुई पूरी। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वव्यापी आयात शुल्कों को खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने की 10% नए कर की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने फागुन 21 को होने जा रहे प्रतिनिधि सभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप में संपन्न करने के उद्देश्य के साथ काम करने का निर्देश किया। चुनावी प्रबंध संबंध में आज लुम्बिनी में हुई प्रदेश स्तरीय सुरक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना सबको जिम्मेदारी है। उन्होंने पश्चिम प्रीतना हेडक्वार्टर बुटवल में हुई प्रदेश स्तरीय एकीकृत सुरक्षा बैठक में प्रदेश की चुनाव की तैयारी लगायत विषय में संज्ञान लिया था। बैठक में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल और प्रमुख जिला अधिकारियों ने प्रदेश के सभी 12 जिलों की चुनावी तैयारियों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया था। यह जानकारी लुम्बिनी प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद कापरी ने दी है। निर्वाचन आयोग ने सुदूर पश्चिम कर्णाली और कोसी प्रदेशों में मतपत्र सहित चुनावी सामग्रियां पहुंच गई है। वहीं बागमती सहित देश के अन्य प्रदेशों में भी नियमित रूप में मतपत्र लगायत सामग्रियों की ढुआई हो रही है। केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में देश की समसामयिक विषयों में शांति सुरक्षा और चुनाव से संबंधित विषयों में विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशेष रूप से तराई मधेश में सामने आ रही समस्याओं के समाधान और चुनावी सुरक्षा चुनौतियों के विषय में विचार विमर्श हुआ था। ये जानकारी मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले ने दी। बैठक ने रौथट में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का भी सभी पक्षों से आग्रह किया है और शांति सुरक्षा कायम रखने का जिला सुरक्षा समिति को निर्देश देने का निर्णय भी किया है। बैठक में चारों ही सुरक्षा निकायों के उच्च पदाधिकारियों ने सुरक्षा लगायत चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी कराई थी। जिला प्रशासन कार्यालय रौथट के सदर मुकाम गौर में आज दोपहर 1 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी हुई है। गौर नगर पालिका 6 सबगढ़वा गांव में आज सुबह दो पक्षों के बीच पुनः झड़प होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू आदेश जारी किया है। गौर नगर पालिका के पूर्व में मुड़बलवा गेट, पश्चिम में लाल बकैया बांध, उत्तर में बमनाहर और दक्षिण में गौर भंसार कार्यालय क्षेत्र तक कर्फ्यू आदेश जारी की गई है। बीते बिहीबार के रात करीब 10:45 बजे गौर नगर पालिका 6 सबगढ़ा में विवाह के बारात में मस्जिद के अगाड़ी बाजा बजाने के विषय पर दो पक्षों के बीच शुरू हुए विवाद सांप्रदायिक झड़प में परिणत हो गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कर्फ्यू आदेश जारी किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाँकी समाचार। आज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस बहुभाषिक शिक्षा में युवा का आवाज के नारे के साथ नेपाल में भी मनाया गया है। बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता के माध्यम से विविधता में एकता और अन्तर्राष्ट्रीय समझदारी प्रवर्धन करने के उद्देश्य के साथ सन 2000 से संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को महासभा के आह्वान में हर साल फरवरी 21 को मनाया जाता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर प्रज्ञा प्रतिष्ठान और काठमांडू स्थित बांग्लादेश के राजदूतावास ने कार्यक्रम आयोजन कर मनाया है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में डिजिटल प्रविधि, सामाजिक संजाल, साहित्य, संगीत, चलचित्र अनुसंधान और उद्यमशीलता मार्फत मातृभाषा को आधुनिक युग के साथ जोड़ने पर जोर दी गई थी। कार्यक्रम में मातृभाषा संरक्षण, विकास और उत्थान के लिए समुदाय द्वारा की गई असल अभ्यास, उपलब्धि और नव प्रयोग को सार्वजनिक किया गया था। तनहू की भीमाद नगर पालिका 5 स्थित वानटांग नदी में पक्की पुल का निर्माण शुरू हुआ है। 23,07,00,000 रूपये के लागत में 130 मीटर लंबाई के पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। भीमाद नगर पालिका प्रमुख दधिराज सुबेदी ने बताया कि भीमाद होते हुए ऋषिंग गांव पालिका के विभिन्न वार्ड जाने वाले उस नदी में पुल होने के वजह से बरसात में इस क्षेत्र में के हजारों लोगों को समस्या भोगना पड़ा था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल वैश्विक टैरिफ लगाते वक्त अपने अधिकारियों को अतिक्रमण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसले में कहा कि ट्रंप 1977 में कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEPA का उपयोग करके दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर टैरिफ नहीं लगा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने टैरिफ के हासिल करीब 130 अरब डॉलर के रिफंड की संभावना खुली छोड़ी है। यह मुद्दा आगे किसी अन्य अदालती विवाद में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक वैकल्पिक कानून ट्रेड एक्ट 1974 में सेक्शन 122 के तहत एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें सभी देशों के सामान पर नया अस्थायी 10% टैरिफ लगाने की अनुमति देता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते वाले सभी देशों पर अब अस्थायी रूप से 10% टैरिफ लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की एक फैक्ट शीट के अनुसार स्टील और एल्युमिनियम पर धारा 232 के तहत 50% और कुछ ऑटो पार्ट्स पर 25% का टैरिफ लागू होगा। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लुम्बिनी प्रदेश में चुनावी सुरक्षा की तैयारी संबंध में प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सुरक्षा अधिकारियों से लिया संज्ञान। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करने के उद्देश्य के साथ काम करने का सुरक्षा निकायों को किया निर्देश। सुदूर पश्चिम कर्णाली और कोसी प्रदेशों में मतपत्र सहित चुनावी सामग्रियों की ढुआई हुई पूरी। और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्वव्यापी आयात शुल्कों को खारिज किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने की 10% नए कर की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।